नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमुई में जनजातीय गौरव दिवस समारोह और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान समारोह में होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए जारी किए दिशा निर्देश, कहा कोचिंग संस्थान नौकरी देने जैसे झूठे दावे नहीं कर सकेंगे। पटना के आसरा गृह में कथित तौर पर फूड प्वाइजनिंग से दो महिलाओं की मौत के मामले में जिलाधिकारी ने 5 सदस्यीय समिति गठित की। और आज बाल दिवस है, राज्य के सभी पंचायतों में बाल सभा का किया जाएगा आयोजन, बच्चों को बाल अधिकार से जुड़े विषयों की दी जाएगी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमुई में जनजातीय गौरव दिवस समारोह और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान समारोह में शामिल होंगे। इस आयोजन के साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत हो जाएगी। श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर आदिवासी समुदायों के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण तथा दूरदराज इलाकों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में देश के 100 जिले और 30 राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने उम्मीदवारों और अभिभावकों को गुमराह होने से बचाने के लिए सभी कोचिंग संस्थानों को अपने छात्रों और पाठ्यक्रमों के बारे में आवश्यक और प्रासंगिक जानकारी देने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
इन दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग संस्थानों को अपने कामकाज के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण और अस्वीकरण को प्रमुखता से प्रकाशित करना होगा, जबकि नाबालिग छात्र छात्राओं की फोटो और प्रशस्ति पत्र इस्तेमाल करने की अनुमति उनके चयन के बाद ही उनसे लेनी होगी। CCPA ने अब तक 45 UPSC कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापनों के लिए नोटिस जारी किया है और 56 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना जब्त किया।
इसमें खास करके जो IAS कैंडिडेट्स हैं, जो सफल होते हैं, वो वास्तव में पता चला कि इन्होंने 1 घंटे का या 3-4 घंटे का एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में ही मात्र भाग लिया था। इसका अर्थ है कि प्रीलिम्स और मेंस उसमें इन इंस्टीट्यूशंस का कोई योगदान नहीं था।
उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए एक अग्र सक्रिय या प्रोएक्टिव तंत्र बनाने का भी निर्देश दिया गया है। सचिव खरे ने बताया कि पिछले साल सितंबर से इस साल अगस्त तक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए कोचिंग संस्थानों को दिए गए 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपभोक्ताओं को वापस दे दी गई है। उन्होंने आशा जताई कि यह दिशा निर्देश कोचिंग संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता और सत्यता लाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श कुमार, नई दिल्ली।
राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आसरा गृह में कथित रूप से विषाक्त भोजन खाने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मामले की जांच के लिए एक 5 सदस्यीय दल का गठन किया है। उन्होंने बताया कि जांच दल ने प्रथम दृष्टया स्थल का निरीक्षण किया और उसकी रिपोर्ट सौंपी है। जिलाधिकारी ने बताया कि आसरा गृह में रह रही महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य जांच के लिए एक मेडिकल टीम की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन ने स्थल का निरीक्षण किया है और खाद्य सामग्री तथा पानी का नमूना लिया है, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। वहीं समाज कल्याण विभाग के निदेशक विजय प्रकाश मीणा ने बताया कि आसरा गृह की अधीक्षक कुमारी अंशु समेत 19 सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आसरा गृह में खाने की सप्लाई करने वाली एजेंसी को भी नोटिस भेजा गया है। साथ ही उपनिदेशक की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। इधर बिहार बाल संरक्षण आयोग ने भी आसरा गृह में रहने वाली बच्चियों के भोजन और दवा की जांच विशेषज्ञों से कराने का आदेश दिया है। साथ ही वहां लगे CCTV कैमरों के 1 सप्ताह के फुटेज की जांच भी की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कार्यपालिका व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करके उनके अपराध का निर्धारण करने में न्यायपालिका के रूप में काम नहीं कर सकती। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर न्यायालय ने कहा है कि उचित प्राधिकार के बिना किसी भी संपत्ति के विध्वंस को गलत समझा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में सक्षमता परीक्षा पास 1,39,000 शिक्षकों को 20 नवंबर को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में चयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं शेष शिक्षकों को प्रखंड और जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार पहली सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 शिक्षकों ने सफलता प्राप्त की है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए हरेक रेलगाड़ी में 4-4 जनरल कोच लगाए जाएंगे। श्री कुमार ने समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिसंबर तक सभी गाड़ियों में अतिरिक्त जनरल कोच लगा दिए जाएंगे।
सभी गाड़ियों में मिनिमम 4 जीएस कोचेस लगाने के लिए करीबन हम लोग 2,000 कोच बना रहे हैं और इसमें से लगभग 900 कोचेस बन चुके हैं और करीबन 4 कोच करने के लिए दिसंबर माह तक हम सभी गाड़ियों में मिनिमम 4 जीएस लगे।
सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पटना साहिब में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज पटना सिटी स्थित गुरु का बाग गुरुद्वारा से तख्त श्री हरिमंदिर साहिब तक नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। इससे पहले कल प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। कल 15 नवंबर को मुख्य समारोह का आयोजन होगा जिसमें कीर्तन, प्रवचन और अरदास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रकाशोत्सव में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कल गंगा सहित विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान किया जाएगा। पटना शहर में विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल ही हरिहर क्षेत्र स्थित गंगा और गंडक के संगम पर भी स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी है। कार्तिक स्नान को देखते हुए नदियों में स्थानीय गोताखोर, एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पटना नगर निगम ने घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की है। 42 घाटों पर दंडाधिकारियों को भी तैनात किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। आज बाल दिवस है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर प्रतिवर्ष 14 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर बच्चों की शिक्षा, देखभाल और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इधर लखीसराय जिले में 3 दिवसीय लखीसराय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बिहार बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने बताया कि बाल दिवस के अवसर पर 14 से 20 नवंबर तक सभी जिलों में बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पंचायतों में बाल सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें बाल अधिकार से जुड़े विषयों की जानकारी दी जाएगी।
हम लोग एक सप्ताह का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इसे हम लोगों ने नाम दिया है बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह। इस दरमियान पटना समेत बिहार के सभी जिलों में विशेष आयोजन किए जाएंगे। हम लोगों ने आयोग की ओर से सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग के माध्यम से निर्देश भेजा है कि उन तमाम स्कूलों में पूरे सप्ताह विशेष आयोजन किए जाएं जिसमें बाल अधिकार से जुड़े विषयों जैसे बाल श्रम है, बाल विवाह है, बाल तस्करी है, गुड टच बैड टच, इन तमाम विषयों पर उस आयोजन के दरमियान चर्चा हो।
आज विश्व मधुमेह दिवस है। मधुमेह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। मधुमेह की रोकथाम, शीघ्र निदान, प्रभावी प्रबंधन और देखभाल तक समान पहुंच में व्यापक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को उजागर करने और लोगों को इस रोग के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मधुमेह दिवस का विषय है अवरोधों को तोड़ना और अंतरालों को कम करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्य में आंख की बीमारियों के इलाज के लिए शंकर नेत्रालय की शाखा खुलेगी। श्री मोदी ने कहा कि इस अस्पताल के खुलने के बाद स्थानीय लोगों को आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यह अस्पताल पटना में खुलेगा।
बिहार को आने वाले समय में आंख का भी एक बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है। कुछ दिन पहले जब मैं काशी में था तो वहाँ कांची कामकोटी के शंकराचार्य जी से आशीर्वाद से बहुत बड़ा आंखों का अस्पताल बना है, उसकी सेवाएं भी उत्तम है। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आंखों के ऐसी ही एक अस्पताल मुझे मेरे बिहार में चाहिए, और उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और अभी मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि उसमें प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है।
इधर स्वास्थ्य विभाग के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि शंकर नेत्रालय की टीम ने राजेंद्र नगर स्थित अस्पताल का दौरा किया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही नेत्रालय यहां काम करने लगेगा। राजगीर में खेले जा रहे महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता में भारतीय टीम आज अपने तीसरे मैच में थाईलैंड से भिड़ेगी। यह मैच शाम 4:45 बजे से खेला जाएगा। दो अन्य मैचों में दक्षिण कोरिया का मुकाबला मलेशिया से जबकि जापान का मुकाबला चीन से होगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की एक बैठक हुई। बैठक में इन राज्यों को पूर्वोदय राज्य बताते हुए इसका प्रारूप तैयार करने पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और योजना तथा विकास विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार समेत अन्य विभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। आयोग ने इन राज्यों के लिए मानव संसाधन विकास, आधारभूत संरचना और आर्थिक गतिविधियों के 3 प्रक्षेत्र तय किए हैं। बैठक के बाद मुख्य सचिव श्री मीणा ने बताया कि बिहार विकास का रोडमैप बनाएगा और केंद्र सरकार इसमें मदद देगी। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ने 3 दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का पटना में उद्घाटन करते हुए कहा है कि महाकवि विद्यापति की जन्मभूमि उगना भवानीपुर को विकसित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 14,58,00,000 रूपये की स्वीकृति दी है। इस मौके पर मैथिली साहित्य के विष्णुकांत मिश्र, संस्कृत साहित्य के लिए डॉक्टर तुला कृष्णा झा को सम्मानित किया गया। निगरानी की टीम ने नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी प्रशांत कुमार को पैक्स अध्यक्ष से 50,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है, सोनपुर मेले के विकास के लिए बनेगा हरिहरनाथ कॉरिडोर। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, दरभंगा एम्स बनने से उपलब्ध होगी अच्छी चिकित्सा सेवा। दैनिक भास्कर ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई पर लिखा है, हंस गुलाब को सहयोग करने वाले 2 और आरोपी गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमुई में जनजातीय गौरव दिवस समारोह और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान समारोह में होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए जारी किए दिशा निर्देश, कहा कोचिंग संस्थान नौकरी देने जैसे झूठे दावे नहीं कर सकेंगे। पटना के आसरा गृह में कथित तौर पर फूड प्वाइजनिंग से 2 महिलाओं की मौत के मामले में जिलाधिकारी ने 5 सदस्यीय समिति गठित की। और आज बाल दिवस है, राज्य के सभी पंचायतों में बाल सभा का किया जाएगा आयोजन, बच्चों को बाल अधिकार से जुड़े विषयों की दी जाएगी जानकारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।